Kaç bu? Page number 535. Volume 8. Ayatul Quran. ठीक है, 535 पेज नंबर हम पढ़ रहे हैं। सूरतुल कलम की तफसीर मारुफ कुरान से, इसमें मारुफ मसाइल चल रहे हैं। الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا ويلنا انا كنا طاغين عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الاخره اكبر لو كانوا يعلمون إلى الآخر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما تو دعاؤں کے ساتھ ہم آج کا کلاس شروع کرتے ہیں تو سورۃ القلم کے اندر واقعہ یہ چل رہا ہے کہ اصحاب الجنہ یعنی کچھ لوگ تھے باغ والے، جنت باغ کو کہتے ہیں، تو وہ یمن کے دارالحکومت صنعاء سے قریب رہتے تھے اور ان کے پاس باغ بھی تھے اور کاشتکاری کی زمینیں بھی تھیں، یعنی وہ کھیتی باڑی بھی کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ القلم میں ان لوگوں کا واقعہ بیان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کا ایک باپ تھا جو کہ بہت نیک تھا، جب ان کے باغ کی اور یعنی کھیتی کی فصل کٹتی تھی تو یہ کیا کرتا تھا کہ اس میں سے جو غلہ بھوسے سے الگ ہو جاتا تھا، جب کھیتی کو گاہا جاتا تھا تو جو دانہ بھوسے سے الگ ہو جاتا تھا اس دانے کو فقراء اور مساکین کے لیے چھوڑ دیتا تھا، اور اسی طرح سے جب باغ سے پھلوں کو توڑا جاتا تھا تو جو باغ سے پھل یعنی درختوں سے پھل جو ہے نیچے گر جاتے تھے تو ان کی بہت بڑی تعداد ہوتی تھی، تو ان پھلوں کو بھی غربا اور مساکین کے لیے چھوڑ دیا کرتا تھا۔ تو اس طرح سے بہت بڑی تعداد میں نا مقدار میں پھل اور فصل وغیرہ جو ہے غریبوں کو مل جایا کرتی تھی، تو جو اس کے علاقے غریب تھے تو وہ جب فصل کاٹنے کا وقت آتا تو وہ ان کے باغ میں اور ان کے کھیت کے اندر پہنچ جایا کرتے تھے تاکہ ان کو اس کے اندر سے حصہ مل جایا کرے۔ لیکن پھر اس آدمی کا انتقال ہو گیا تو اس کے جو لڑکے تھے یعنی اس کے بیٹے تھے تو انہوں نے آپس میں طے کیا کہ اب ہماری جو خاندان ہیں، ہمارے بال بچے ہیں تو یہ بہت زیادہ ہیں، تو اب ہمیں نا زیادہ ضرورت ہے ان چیزوں کی، تو ہم اب غریبوں میں ان کو نہیں بانٹیں گے۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ جس دن ہم فصل کاٹنے کے لیے جائیں گے نا تو اس دن ہم بہت صبح سویرے اپنے گھروں سے نکل جائیں گے اور ایسے خاموشی سے نکلیں گے کہ جو ہمارے آس پڑوس کے اندر غریب غربا رہتے ہیں ان کو پتہ ہی نہ لگے کہ یہ لوگ جا رہے ہیں فصل کاٹنے کے لیے۔ تو ہم لوگ جلدی سے جا کر کے فصل کاٹ لیں گے اور جتنا کچھ بھی وہاں پر ہوگا نا سب کچھ سمیٹ کر کے اپنے گھروں میں لے کر کے آ جائیں گے تاکہ غریبوں کو اس میں سے کچھ بھی نہ مل سکے۔ یہ ان لوگوں نے فیصلہ کیا، ٹھیک ہے۔ لیکن ان کا یہ فیصلہ کرنا خالی اللہ تعالیٰ کو اتنا ناپسند ہوا کہ جب یہ رات کو سو ہی رہے تھے، ابھی یہ اٹھ کر کے اپنے کھیتوں کی طرف روانہ ہی نہیں ہوئے تھے कि अल्लाह ताला ने इनके बाग के ऊपर और इनके जो फसल थी उसके ऊपर ऐसा अजाब भेजा कि एक आग लगी और उस आग ने हर चीज को जला करके खाकस्तर कर दिया, ठीक है, बिल्कुल यानी काला कर दिया जला करके, एज इफ कि वहां पर कोई चीज थी ही नहीं, कोई खेती, कोई दरख्त, कोई फल वगैरह वहां पर थे ही नहीं, इस तरीके से ना जला करके खाक कर दिया। तो इनके बाप ने नेकी का रास्ता इख्तियार किया था, तो जब तक वो नेकी ये लोग करते रहे थे तो अल्लाह ताला ने इनके काम के अंदर बहुत बरकत दी थी, इनकी जो माल माल दौलत थी उसके अंदर इस बाग के जरिए से बहुत ज्यादा बढ़ाई यानी बढ़ोतरी होती थी और बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन इन लोगों ने अब ये यानी बुराई का इरादा किया कि अब हम इसमें से किसी को कुछ नहीं देंगे। तो अल्लाह ताला ना इस चीज़ को बिल्कुल पसंद नहीं करते कि हम जो रिज़्क अल्लाह ताला ने हमें दिया है, ठीक है, अल्लाह ताला देखे हमें बार बार कुरान के अंदर याद दिलाते हैं कि ये जो तुम रिज़्क खाते हो, जिस रिज़्क से तुम अपनी ज़िंदगी की ज़रूरियात पूरी करते हो, ये मैंने तुम्हें दिया है। हालांकि बज़ाहिर देखा जाए तो भाई हम अपनी मेहनत से इस रिस्क को कमा रहे होते हैं, हम कोई जो है वो अपने बाग में जा करके जब मेहनत करता है, दरख्त उगाता है, दरख्त को पानी डालता है और वहाँ से फिर जो फल होता है उस फल की बड़ी निगहदाश्त करता है और उसके बाद बुलाकर उस फल को तोड़ता है, ठीक है, तो ये उसकी अपनी ज़ाती मेहनत होती है ना। और उसी तरीके से खेत में जा करके जो काम करता है वो भी उसकी ज़ाती मेहनत होती है। अगर किसी दुकान में जा करके कोई सुबह से लेकर के रात तक बैठता है और वहाँ पर कस्टमर्स को जो है वो अच्छे अच्छे से अपने माल को फरोख्त करता है, ठीक है, बहुत उसको कस्टमर्स को कन्विंस करने की कोशिश करता है, अपने माल को साफ सुथरा रखने की कोशिश करता है और न जाने क्या क्या काम ये दुकानदार लोग करते हैं, तो ये तो मेहनत होती है ना। अच्छी खासी गर्मी होती है, हमने देखा कि हम किसी कपड़ों की मार्केट में अगर कराची जैसे शहर के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर जो कपड़ों की मार्केट अंदर से इतनी गर्म होती है कि हमसे तो वहाँ ठहरा नहीं जाता, लेकिन वो जो ताजर होता है वहाँ पर सुबह से लेकर रात तक बैठा रहता है पसीने में शराबोर, राइट, और कितनी ज़्यादा मुश्किल होती है वहाँ पर, फिर उसके बाद अपना माल यानी तैयार करने के लिए उनको कितना जो है वो सफ़र करना पड़ता है और धक्के खाने पड़ते हैं और जाने क्या, यानी बहुत ज्यादा मेहनत होती है जिसके बाद कहीं जा करके इंसान को कुछ पैसे मिलते हैं, राइट। तो इंसान के जहन में फिर क्या बात आती है कि देखो मैंने जो कमाया है ये मेरे अपने मेहनत की कमाई है, ठीक है, मेहनत की कमाई, मेहनत की वजह से। उसी तरीके से कुछ लोग जो है वो जाहिरी तौर पर कोई मेहनत नहीं कर रहे होते हैं, वो दफ्तरों में जाते हैं, दफ्तर में जाकर के व्हाइट कॉलर जॉब्स करते हैं, व्हाइट कॉलर जॉब्स उनको कहते हैं कि जैसे कि आप मैनेजर होते हैं, आप अपने कमरे में जा करके अपने डेस्क के ऊपर बैठ जाते हैं, ठीक है, और फिर वहां पे जा करके आप अपने लैपटॉप के ऊपर जो है वो अपना काम करते हैं और अपने टीम को जो है वो अपने लैपटॉप में ईमेल के जरिए से ही आप हिदायत देते हैं और उनसे जो है वो आप मीटिंग्स करते हैं और उसके ऊपर उनको यानी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स वगैरह आप करते हैं, ठीक है, तो आप कोई हाथ पैर नहीं हिला रहे होते हैं उसमें, ठीक है ना, यानी आप कोई फिजिकल मेहनत, फिजिकल सख्ती नहीं बर्दाश्त कर रहे होते हैं, बस दफ्तर के अंदर एयर कंडीशन कमरे के अंदर बैठ के काम कर रहे होते हैं, तो वहां पे आप क्या कर रहे होते हैं, वहां तो आप मेहनत नहीं कर रहे होते, ठीक है, तो उनको ज्यादा पैसे मिलते हैं। ऐसे जो एग्जीक्यूटिव होते हैं अपने दफ्तर में बैठ के काम करने वाले, उनको तो महीने के आखिर में और भी ज्यादा पैसे मिलते हैं, ठीक है ना, जिनको व्हाइट कॉलर वर्कर्स कहते हैं, व्हाइट कॉलर जॉब्स इनको कहते हैं, ठीक है, तो ये अच्छा अगर आपसे पूछें आपके पार्टिसिपेशन की खातिर कि ये कौन सी वाली मेहनत कर रहे होते हैं जो इनको इतने सारे जो पैसे आखिर में मिलते हैं, जी इसको मेंटल स्ट्रगल कहते हैं, बिल्कुल सही आपने जवाब दिया, ये जहनी जहनी मेहनत कर रहे होते हैं, ठीक है ना, ये अपना दिमाग लगा रहे होते हैं और दिमाग लगाने की जो मेहनत होती है ये एक्चुअली हाथ पैर की मेहनत से भी ज्यादा होती है, ठीक है, इसी वजह से ये जो ओनर्स होते हैं, चाहे वो इवन किसी बिजनेस के ओनर्स हो, ठीक है, ये कपड़ों की दुकान के जो ओनर होते हैं वो ओनर्स भी कोई फिजिकल एफर्ट तो नहीं कर रहे होते हैं छोटे ताजरों की तरीके से, बल्कि लेकिन पैसे उनको ज्यादा मिलते हैं ना, ज्यादा प्रॉफिट तो सेठ साहब को ही मिलता है ना, ठीक ठीक है, जो ओनर साहब होते हैं उनको मिलता है, तो उनको क्यों ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा होता है? क्योंकि वो अपनी मेंटल स्ट्रगल कर रहे होते हैं, जहन को जो है वो बहुत ज्यादा लगा रहे होते हैं। इसी वजह से इन ये जो लोग होते हैं ना, इनका जहन जो है वो परेशान भी ज्यादा होता है, फिक्रमंद भी ज्यादा होता है, और इसकी वजह से अक्सर इनमें इन लोगों में जो है वो जहनी टॉर्चर, जहनी टेंशन जो है वो भी बहुत ज्यादा पैदा हो जाती है, जहनी तौर पर बीमार भी हो जाते हैं। एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन के ऊपर भी यही लोग होते हैं ना, जो ज्यादा पैसे कमाते हैं और यानी बैठ के जो खाने वाले लोग होते हैं, क्योंकि ये जहनी तौर पर जो है वो मेहनत कर रहे होते हैं। तो इंसान को ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि देखो, ये जो मेरे पास पैसे आए हैं ना, ये मेरी अपनी मेहनत की कमाई है। लेकिन परवरदिगार कुरान के जरिए से हमें बार बार याद दिला रहे होते हैं कि मेहनत तुम्हारी बेशक अपनी जगह पर, ठीक है, मेहनत करने का तुम ये मैंने तुम्हें मना नहीं किया अपने रिस्क के लिए मेहनत करने से, बल्कि मैंने तो अपने हबीब अलैहिस्सलाम के जरिए से तुम्हें ये बात बताई है कि मेहनत करने वाला मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, अल कासिबु हबीबुल्ला। लेकिन अपनी मेहनत के बावजूद ये बात याद रखना कि तुम्हें जो रिस्क मिलता है वो मैं ही देता हूँ, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क जो है ना, ये मैंने अपने कंट्रोल में रखा हुआ है, ये तुम्हारी मेहनत के बकदर मैं नहीं देता तुम्हें, ठीक है, कि कितनी मेहनत करोगे उतना रिस्क मिलेगा, ये मैंने कोई उसूल नहीं बनाया हुआ, ठीक है। लेकिन ये तो उसी बात उसी बंदे को ये रिमाइंडर्स मिलेंगे ना, जो कि कुरान के साथ जुड़ेगा, जो कुरान को समझ करके पढ़ेगा, उसको ये रिमाइंडर्स मिलते रहेंगे, ठीक है ना। वरना क्या होगा कि सुबह शाम दफ्तर में जाना, दफ्तर से आना, या दुकान में जाना, दुकान से आना, तो इंसान भूल जाता है इस अहम तरीन हकीकत को, भूल जाता है कि ये रिस्क जो है वो उसे अल्लाह की तरफ से मिल रहा है, वो ये समझना शुरू हो जाता है कि ये रिस्क उसको अपनी मेहनत की वजह से मिल रहा है। इसी वजह से कुरान जो है ना, ये किताब हिदायत कही जाती है ना, तो किताब हिदायत ही उसी वक्त होती है कि जब हम इससे अपनी हिदायत हासिल करते हैं, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस हासिल करते हैं। अगर हम इंस्ट्रक्शंस हासिल ना करें तो फिर तो ये हमारे लिए किताब हिदायत ना रही ना। मिसाल के तौर पर आप कोई अच्छा सा फूड प्रोसेसर खरीद करके अपने घर में ले आए, ठीक है, अब वो फूड प्रोसेसर जो है उसके साथ इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी होता है ना, ठीक है, किताब होती है जिसके अंदर उस फूड प्रोसेसर को इस्तेमाल करने का तरीका बताया जाता है, तो वो किताब हिदायत होती है उस फूड प्रोसेसर को चलाने के बारे में, या उस फूड प्रोसेसर की जो भी जो उसके मैन्युफैक्चरर ने उसके अंदर जो कैपेबिलिटीज रखी हैं, जो उसके अंदर आपके लिए फंक्शनैलिटीज रखी हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें तो उस किताब हिदायत में, जिसको यूज़र मैनुअल कहते हैं, उसके अंदर लिखी हुई हैं। लेकिन आप उस यूज़र मैनुअल को उठा करके अपने किचन के किसी शेल्फ के अंदर बंद कर दें, ठीक है ना, और फिर उस फूड प्रोसेसर को अपनी अकल के मुताबिक इस्तेमाल करना शुरू कर दें, ठीक है। तो अब अपनी अकल के मुताबिक जब आप इस्तेमाल करेंगी तो आपने एक दो बटन इस्तेमाल करने सीख लिए उसके, तो आप उसके जरिए से ना काम करे चली जा रही हैं, काम करे चल चली रही, रोजाना जो है वो अपने किचन में जाती हैं और उस फूड प्रोसेसर को इस्तेमाल करती हैं, वही जो दो तीन बटन इस्तेमाल करने आपने सीख लिए हैं, ठीक है। तो आप थोड़े देर में ना फिर ये भूल जाती हैं कि ये फूड प्रोसेसर जो है तो इसके अंदर तो और भी बहुत सारी फंक्शनैलिटीज होनी होती हैं, ठीक है, जो कि उस किताब हिदायत के अंदर, जिसको यूजर मैनुअल कहते हैं, उसमें लिखी हुई है, ठीक है। मुझे उस यूजर मैनुअल को भी पढ़ना चाहिए ताकि मैं इस फूड प्रोसेसर को ज्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकूं, ठीक है ना, इसकी फंक्शनैलिटीज को ज्यादा अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकूं। लेकिन आपके जहन से ये बात खत्म हो जाती है, तो अब जो है ना आप समझती हैं कि जो मैं कर रही हूँ ना इस फूड प्रोसेसर के साथ, बस यही है, यही इसकी रियालिटी है, यही इसकी हकीकत है, यही इसकी लिमिटेशन है, ठीक है ना, इतना ही काम ये कर सकता है। तो वक्त के साथ ना इंसान ये समझना शुरू हो जाता है कि वो सारा काम अपनी अकल से कर रहा है, अपनी सोच से कर रहा है। हालांकि अगर वो मैन्युफैक्चरर, यानी जो उसका बनाने वाला है उस चीज का, उसके यूजर मैनुअल को भी पढ़ता रहे बाकायदगी के साथ, तो उसको ज्यादा फंक्शनैलिटीज पता चलती रहेंगी, ठीक है ना। उसी तरीके से अगर उस फूड प्रोसेसर के अंदर अगर कोई फॉल्ट आ जाएगी, तो उस फॉल्ट को भी दुरुस्त करने की बहुत सारी तरकीबें उस यूजर मैनुअल के अंदर लिखी हुई होती हैं, ठीक है ना, आप आसानी के साथ उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। बल्कि आप अगर फूड प्रोसेसर को मैन्युफैक्चरर के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक इस्तेमाल करें, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो पैदा ही नहीं होंगी उसके अंदर, जो कि गलत इस्तेमाल करने की वजह से पैदा हो जाती हैं, ठीक है। तो बिल्कुल यही मामला जो है वो हमारी जिंदगी के साथ कुरान का है, ठीक। कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने ये हकीकतें हमें रिमाइंड करवाई हैं ताकि हम इनके मुताबिक सोचें, अपनी सोच इनके मुताबिक करें, अपने अमल इनके मुताबिक करें, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट ही नहीं होंगी, ठीक है ना। जैसे कि ये जो टेंशन हुई भी होती है लोगों को कि भाई पैसा कहाँ से आएगा, कब आएगा, क्यों, कैसे होगा ये सारा मामला, ठीक है। इसकी वजह से जब ये सोचना शुरू कर देते हैं तो ये चूंकि एक गलत सोच है, ठीक है भाई। माल जो है वो आपको अल्लाह ताला ने देना है, अल्लाह ताला के खजानों के अंदर कोई कमी नहीं है माल असबाब की, ठीक है ना। तो आपको अल्लाह ताला देगा जैसे कि उसने देने का एक तरीका बनाया हुआ है, तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लेकिन चूंकि कुरान से हम कट चुके हैं, टूट चुके हैं हम कुरान से, हम तो कुरान के अंदर इन रिमाइंडर्स को पढ़ते ही नहीं है, ज्यादा से ज्यादा तिलावत की हद तक पढ़ते हैं, जिसकी वजह से सवाब मिल जाता है हमें, राइट। लेकिन हिदायत तो नहीं मिलती ना तिलावत करने से। आपका क्या ख्याल है, तिलावत करने से हिदायत भी मिलनी शुरू हो जाती है? अगर आप ये समझती हैं तो बिल्कुल गलत समझती हैं। तिलावत करने से सवाब मिलता है, इसकी कोई नफी नहीं कर सकता, कोई नहीं कह सकता कि नहीं सवाब नहीं मिलता, सवाब मिलता है तिलावत करने से। लेकिन सवाब एक अलग चीज है, हिदायत एक अलग चीज है, इंस्ट्रक्शंस, हिदायत ये अलग चीज है, सवाब एक अलग चीज है, हिदायत जो है वो सीखनी पड़ती है, तिलावत करने से हिदायत नहीं मिलती है। अगर कोई समझता है ना तो अपने इस सोच को दुरुस्त करने की जरूरत है, ठीक है। इन दो चीजों में फर्क अब समझ में आता है, सवाब क्या चीज होती है और हिदायत क्या चीज होती है, ठीक है। तो कुरान को समझ के पढ़ने से ही हिदायत मिलती है, ओके, उसके बगैर हिदायत नहीं मिलती। तो जब ये गलत सोच हमारे अंदर पैदा होनी शुरू हो जाती है, तो इस गलत सोच की वजह से फिर हमारी जो जिस्म की मशीनरी है वो खराब होना शुरू हो जाती है, ठीक है ना। उसके अंदर फिर जहनी नफ्सियाती बीमारियां पैदा होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है ना। इन बीमारियों की वजह से हमारी तबीयत खराब हो जाती है, हमारा मिजाज खराब हो जाता है। जब हमारा मिजाज खराब हो जाता है तो अब हमें गुस्सा आना शुरू हो जाता है, ठीक है ना, गुस्सा आना शुरू हो जाता है। और अब जब ये गुस्सा आता है तो फिर अब ये गुस्सा किसी के ऊपर निकलेगा ना, ठीक है। तो अब ये गुस्सा जो है वो घर के अफराद के ऊपर निकलता है, ठीक है, यानी बीवी के ऊपर निकलता है, बच्चों के ऊपर निकलता है, बुजुर्गों के ऊपर निकलता है, ठीक है। लेकिन ये आपके अंदर जो मिजाज की खराबी पैदा हुई है, ये क्यों पैदा हुई है, इसकी वजह क्या बनी? इसकी वजह यही बनी कि आपने इंस्ट्रक्शंस मैनुअल के मुताबिक अपने जिंदगी को नहीं चलाया, आपने अपनी सोच को जो खालिक का यूजर मैनुअल है यानी कुरान, अपनी सोच को उसके मुताबिक नहीं बनाया, बल्कि आपने अपने ही तौर पर जो है वो अपनी सोच को बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो इस वजह से ना आपकी सोच में खराबी पैदा हो गई, और उस खराबी की वजह से आपके मिजाज में खराबी पैदा हो गई। अब मिजाज में खराबी पैदा होने की वजह से आपके ताल्लुकात में खराबी पैदा होने शुरू हो गई, घर के अफराद के साथ ताल्लुकात, फैमिली वालों के साथ ताल्लुकात, पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात आपके खराब हो गए, हद तक के साथ काम करने वाले लोगों के साथ आपके ताल्लुकात खराब होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये गुस्सा जो है एक बीमारी है, और ये बीमारी जो है वो इन यानी बेएहतियाती और गलत तरीकों से सोचने की वजह से ना ये गुस्से की बीमारी पैदा होती है, ठीक है। और आप जानते ही हैं कि इस गुस्से की बीमारी की वजह से किस तरीके से फिर घर बर्बाद होते हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे तकरीबन तमाम घरों का यही हाल है, ठीक है ना। इल्ला माशाल्लाह कितने घर होते हैं जहाँ पर के कुरान की हिदायत के मुताबिक लोग अपनी सोचों को बनाते हैं, अपने आमाल को बनाते हैं, ऐसे तो घर बहुत ही कम होते हैं ना, ठीक है। अक्सर घर तो सारे ऐसे ही हैं जहाँ पर के नहीं ऐसा हो रहा होता है। तो इस वजह से हर घर के अंदर ही लोग गुस्से के मरीज के शिकार हैं, और इसकी वजह से फिर घरों के माहौल को जो है यानी घरों का माहौल जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ हुआ है, और ख़ानदानों के दरमियान इस तरह के जो मसले मसाइल आजकल पैदा हुए हैं वो इसी वजह से पैदा हुए हैं, ठीक है। तो ये जो बाग वाले थे, तो इन्होंने अपनी सोच को जो है जब गलत इस्तेमाल किया तो फिर अल्लाह ताला के इनके उनके ऊपर नाराज़गी आई, और अल्लाह ताला ने इनके इस बाग को तबाह कर दिया, ठीक है। तो पेज नंबर 535 के जो आखिरी दो पैराग्राफ्स हैं वहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ कि फतनादा मुस्बिहीन, यानी सुबह अंधेरे से सुबह सुबह जब मुंह अंधेरा जिसको कहते हैं, उसी वक्त से आपस में एक दूसरे को आवाज देकर जगाने लगे कि अगर खेती काटना है तो सवेरे चलो। वहुम यतखाफतून, यानी घर से निकलने के वक्त आपस में आहिस्ता आहिस्ता बात करते थे कि किसी फकीर और मस्कीन को खबर ना हो जाए जो साथ लग जाए फिर हमारे। वगदौ अला हर्दिन कादरीन, हर्द के मानी मना करने और गैज़ो गज़ब दिखाने के, ठीक है ना। गैज़ो गज़ब यानी गुस्सा दिखाना और सख्ती के साथ किसी को मना कर देना, ये अरबी में हर्द कहते हैं। मतलब ये है कि ये लोग अपने ख्याल में ये समझ कर चले कि हमें इस पर कुदरत है कि हम किसी फकीर और मस्कीन को कुछ न दें, कोई आ भी जाएगा ना तो हम उसको गुस्से से दफा कर देंगे, ठीक है ना, मना कर देंगे कि जाओ जाओ आज हमने कुछ नहीं देना तुम्हें, ठीक है। तो इस बात पर ये अपने आप को कादिर समझना शुरू हो गए, ठीक है, कि हम जा कर के खेती काटेंगे और फिर अगर कोई गरीब आ भी गया ना तो हम उसको सख्ती के साथ जो है वो वापस भेज देंगे, मना कर देंगे, ठीक है। तो समझते थे कि ये ऐसा कर लेंगे, लेकिन हुआ क्या, फलम्मा रऊहा, के जब ये वहां पर पहुंचे और उन्होंने अपनी खेती को देखा, कालू इन्ना लगालून, तो अव्वल तो ये कहने लगे कि हम जगह को भूलकर कहीं और आ गए हैं, लगता है कि हम अपने बाग में नहीं पहुंचे हैं बल्कि हम किसी और जगह आ गए हैं, ठीक है। लदौलून से यहाँ पर मुराद ये है कि हम रास्ता भटक चुके हैं, फिजिकल रास्ते की बात कर रहे हैं अभी ये, ठीक है ना, हिदायत हुआ से गुमराही वाले रास्ते की बात नहीं कर रहे, बल्कि हम फिजिकली जो रास्ता इख्तियार करके अपने खेत में पहुंचे हैं ना, हम लगता है गलत रास्ते पे आ गए हैं, यहाँ तो हमारा खेत है ही नहीं, राइट, यहाँ तो ना बाग है ना खेत। मगर फिर करीबी मुकामात और निशानात पर गौर किया, ठीक है ना, यानी फिर जब जरा गौर किया कि अच्छा यहाँ पे बराबर में ये इमारत होती थी, ये घर होता था और ये ऐसी जगह होती थी, तो खेत तो हमारा यहीं पर था, ठीक है ना। तो फिर उनको मालूम हुआ कि जगह तो यही है लेकिन खेत जलकर खत्म हो चुका है। तो कहने लगे, बल नहनु महरूमून, यानी हम इस नेमत से महरूम कर दिए गए, ठीक है, खेत ही था ना इनके पास, इनके यानी कमाने का जो जरिया था वो तो वो खेत ही था। अब वो सारा का सारा खेत जो है जब एकदम जल करके खत्म हो गया तो क्या हुआ, इसी को कहते हैं ना कि आसमान से जमीन पर आ गए एकदम, राइट, एकदम ही सब कुछ खत्म हो गया ना इनका, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर एक साहब जो है वो गाड़ी टैक्सी के तौर पर चलाते हैं और उस टैक्सी के तौर पर गाड़ी चलाने की वजह से फिर उनको दिन में कमाई होती है उनकी, और कमाई से फिर उनके जरूरियात पूरी होती हैं, ठीक है। एक दिन वो अपने घर से बाहर निकलें और देखें कि जो उनकी टैक्सी है वो जल करके खाक हो चुकी है बिल्कुल, यानी अब उस टैक्सी को वो चला ही नहीं सकते। तो क्या उनको एकदम से ये शौक नहीं मिलेगा कि यही तो मेरा वाहिद कमाने का जरिया था, मेरे पास तो कोई और टैक्सी है ही नहीं, मेरे पास तो कोई आमदनी का और जरिया है ही नहीं, तो अब तो सब कुछ ही मेरा खत्म हो गया ना, राइट। तो क्या उसकी उसकी सोच होगी, बिल्कुल वही सोच जो है वो इनकी भी थी, ठीक है, क्योंकि एकदम ना ये जैसे कहते हैं ना कि मिलियनेयर से आप एकदम बैंकरप्ट हो जाए, बिल्कुल ये इनका मामला था। तो फौरन ही इनको बात समझ में आ गई कि अब तो सब कुछ हमारा खत्म हो गया, बल नहनु महरूमून, हम तो अब महरूम कर दिए गए जिस नेमत के हम कल तक ओनर्स थे, हम उस नेमत से महरूम कर दिए गए। काला औसतुहुम, तो इनमें से जो दरमियाना आदमी था, यानी इन भाइयों में जो जो दरमियानी उम्र वाला था और मिडिल ब्रदर, तो उसने कहा, अलम अकुल लकुम लौ ला तुसब्बिहून, ठीक है। तो कहते हैं कि इनमें से जो दरमियाना आदमी था, यानी बाप की तरह नेक साले अल्लाह की राह में खर्च पर खुश होने वाला था, ठीक है ना, यानी इनके इन भाइयों के दरमियान एक ऐसा भी था जो कि इन दूसरे भाइयों की तरह से बखील और सख्त दिल नहीं था। इसने कहा कि क्या मैंने तुम्हें पहले ही नहीं कहा था कि तुम अल्लाह के नाम की तस्बीह क्यों नहीं करते हो, लौला तुसब्बिहून, तुम क्यों नहीं अल्लाह की तस्बीह करते हो। तस्बीह के लफ्जी मानी पाकी बयान करने के, ठीक है, लफ्जी मानी तो यह है कि सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला पाक है, ठीक है। अब ये जो अल्लाह ताला पाक है हम कहते हैं ना, ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है, कि अल्लाह ताला किसी भी बुराई से पाक है, किसी भी बुराई से, ठीक है ना। तो उमूमी तौर पर ये इसका मतलब समझा जाता है कि अल्लाह ताला शिर्क से पाक है, ठीक है, कि कोई बुत या किसी किस्म के कोई पार्टनर्स जो हैं वो अल्लाह ताला के साथ नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला की कुदरत कामिल है, मुकम्मल है। अल्लाह ताला की कुदरत में कोई शरीक नहीं है कि अल्लाह ताला को किसी हेल्पर की जरूरत हो, मददगार की जरूरत हो अपने काम निपटाने के लिए, अपने काम करवाने के लिए। अल्लाह ताला को किसी मददगार की जरूरत नहीं है, क्योंकि मददगार की जरूरत होना ये एक नुक्स है, ये एक फॉल्ट है कुदरत के अंदर, ठीक है ना। जैसे कि हम अपने बहुत सारे काम मदद के बगैर नहीं कर सकते, ठीक है, हमें लोगों की मदद चाहिए होती है, हमें मशीनों की मदद चाहिए होती है, तो ये हमारी कुदरत में एक नुक्स है कि हम मदद के बगैर काम नहीं कर सकते। अगर मददगार नहीं हो तो हमारे काम अधूरे पर रह जाएं, राइट, अनफिनिश्ड काम रह जाएं, या हमारे काम अच्छे से ना हो सकें, बल्कि बगैर मदद के अगर हम कोई काम करेंगे तो वो काम भी जो है वो नाकस होगा। अल्लाह ताला के साथ ये मामला नहीं है, अल्लाह ताला को किसी मददगार की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम जब सुभान अल्लाह कहते हैं ना, तो हम ये डिक्लेयर कर रहे होते हैं कि अल्लाह ताला को किसी पार्टनर की जरूरत नहीं है, कोई पार्टनर नहीं अल्लाह ताला का। पार्टनर को अरबी में शरीक कहते हैं, शरीक, ठीक है ना। और यही मतलब होता है कि अल्लाह ताला को शिर्क से हम पाक कह रहे हैं, ठीक है, कि अल्लाह ताला को किसी पार्टनर की जरूरत नहीं है। अच्छा, जब अल्लाह ताला को पार्टनर की जरूरत नहीं है, मददगार की जरूरत नहीं है, तो फिर अल्लाह ताला ने इतने सारे फरिश्ते क्यों रखे हुए हैं काम करने के लिए? अल्लाह ताला ने इतने अनगिनत, अरबों खरबों तो कोई मिकदार ही नहीं है, अनगिनत हैं, यानी आप काउंट ही नहीं कर सकते फरिश्तों की तादाद को। और हमें कुरान से ये बात साबित है कि अल्लाह ताला के काम जो है ये फरिश्ते करते हैं, सारे काम जो है वो फरिश्तों के जरिए से होते हैं, हर किस्म का काम, ठीक है ना। और इसमें सबसे बड़ा काम जो नबियों को वही पहुंचाना, वो भी फरिश्ते ही करते थे, राइट, बारिशें बरसाना वो भी फरिश्ते करते हैं, हर काम ही फरिश्ते करते हैं, ठीक है। तो ये फरिश्ते तो अल्लाह ताला के काम करते हैं, तो क्या ये अल्लाह ताला के पार्टनर नहीं है? तो क्या कहेंगे आप इनको, क्या ये पार्टनर है अल्लाह ताला के? और अगर पार्टनर नहीं है तो फिर ये क्या है? जी, आपसे पूछ रहे हैं इसका इसका जवाब। अगर ये फरिश्ते जो कि अल्लाह ताला का सारा काम करते हैं, ये अल्लाह ताला के पार्टनर नहीं है, तो फिर क्या है? अल्लाह ताला के हुक्म के पाबंद है, सबॉर्डिनेट है। हुक्म के पाबंद वाला मसला तो अभी आपसे पूछा ही नहीं था ना। तो इनकी हैसियत जो है वो सबॉर्डिनेट की है, ठीक है ना, जिसको कि हम उर्दू में कह सकते हैं कि खादिम, खिदमतगार, ठीक है। देखें, पार्टनर अलग चीज होती है और खिदमतगार अलग चीज होती है, ठीक है, गुलाम, खिदमतगार, ठीक है। खिदमतगार और पार्टनर में फर्क होता है, ठीक है। पार्टनर जो होता है वो ऐसा होता है कि जिसके ऊपर आप डिपेंड करते हो, ठीक है ना। कुछ ना कुछ ओनरशिप पार्टनर के पास होती है, कभी 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 जो होता है किसी बिजनेस में लोग 50-50 पार्टनरशिप करते हैं, ठीक है। कभी बिजनेस के अंदर लोग 70-30 पार्टनरशिप करते हैं, कि बड़ा जो जो पार्टनर होता है उसके पास 70% शेयर्स होते हैं और छोटे पार्टनर के पास 30% शेयर्स होते हैं, ठीक है। कभी पार्टनरशिप जो होती है वो 90-10 की पार्टनरशिप होती है, कि जो अमीर पार्टी होती है उसके पास 90% हिस्सा होता है बिजनेस का, और जो गरीब पार्टी होती है उसके पास 10% हिस्सा होता है बिजनेस का, ठीक है। लेकिन चाहे जितना ही कम हिस्सा क्यों ना हो, बहरहाल ये पार्टनरशिप कहलाती है, ठीक है ना। वो जो 10% भी पार्टनर है ना, 10% का पार्टनर, तो वो भी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर रहा होता है, वो भी ओनर, यानी उसके पास भी ओनरशिप होती है, 10% ओनरशिप होती है, बहुत कम ओनरशिप होती है, लेकिन बहरहाल वो मालिक होता है उस 10% का, ठीक है ना। और जो 90% ओनरशिप वाला होता है वो उस 10% के वाले ओनर के ऊपर डिपेंडेंट होता है, उसके ऊपर उसका इन्हिसार होता है 10% कैपिटल के लिए, 10% इन्वेस्टमेंट के लिए उस पार्टनर के ऊपर इन्हिसार करना होता है उसको, ये पार्टनरशिप होती है। और दूसरी चीज होती है सबॉर्डिनेटशिप या खिदमत गुजारी। ये खिदमत गुजार जो होते हैं ना, नौकर जिनको कहते हैं, ये नौकर के ऊपर जो मालिक होता है वो डिपेंड नहीं करता। क्यों नहीं डिपेंड करता? इसलिए कि नौकर जो है वो उसके हुक्म का पाबंद होता है, अगर वो हुक्म पर अमल करेगा तो उसको नौकरी में रखा जाएगा, अगर वो हुक्म पर अमल नहीं करेगा तो उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ठीक है ना? ऐसा तो नहीं है ना कि नौकर कहे कि भाई आप मुझे नौकरी से निकाल ही नहीं सकते, राइट? आप अगर मुझे नौकरी से निकाल देंगे तो आपका काम ही नहीं होगा, राइट? नौकर के साथ तो ऐसा नहीं होता, भाई अगर तुम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा, मैं तुम्हारी जगह किसी और को नौकर रख लूंगा, राइट? तुम्हारी जो स्किल्स हैं, तुम्हारी जो कैपेबिलिटीज हैं, उस कैपेबिलिटी वाले मुझे बहुत सारे नौकर मिल जाएंगे, तो तुम्हें निकाल दूंगा, मैं किसी और को नौकर रख लूंगा, तुम्हारे ऊपर मैं डिपेंड नहीं करता हूँ। ठीक है ना? अपने आप को मेरा पार्टनर समझने की कोशिश ना करो, तुम हो मेरे नौकर, तुम हो मेरे गुलाम। ठीक है ना? तो ये फर्क है पार्टनर में और गुलाम में और नौकर में, राइट? तो फरिश्ते जो है ये अल्लाह ताला के नौकर हैं, अल्लाह ताला इन पर डिपेंड नहीं करते। अल्लाह ताला एक फरिश्ते से काम करवाते हैं, अगर वो नहीं करता तो उसको खत्म, यानी ऐसा कभी होता नहीं है कि फरिश्ते काम ना करें, क्योंकि फरिश्ते जो हैं वो तो अल्लाह के हुक्म के गुलाम है, लेकिन अल्लाह ताला इनसे काम करवाते हैं। ठीक है ना? उसी तरीके से अल्लाह ताला इंसानों से भी काम करवाते हैं। ठीक है? कुछ ऐसे बाकायदा इंसानों की कैटेगरी, इंसानों की एक कैटेगरी है, ठीक है, जिनको के क्या कहते हैं, किसी को नाम याद है? अगर किसी ने हमारी जो यूथ क्लास होती है सूरह कहफ की तफसीर वाली क्लास, तो उसमें हमने इस कॉन्सेप्ट को काफ़ी तफसीर के साथ इवन बच्चों को भी समझाया था। ठीक है? कि कुछ खास अल्लाह ताला के बंदे होते हैं कि जिन बंदों को अल्लाह ताला ने ना बस अपने काम के लिए वैसे ही रखा हुआ होता है जैसे कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को अपने काम के लिए रखा हुआ है। ठीक है? तो वो बंदे जो हैं वो बस अल्लाह ताला के हुक्मों को एग्जीक्यूट करते हैं इस दुनिया के अंदर, और अल्लाह के तकवीनी निज़ाम को चलाते हैं इस दुनिया में अल्लाह के हुक्म से। ठीक है ना? और खिजर अलैहिस्सलाम उनमें से एक थे। ठीक है? इन बंदों को जो है वो अब्दाल कहा जाता है। हाँ, अब्दाल। ठीक है? तो जिस तरह से फरिश्ते काम करते हैं ना, ये इंसान भी उसी तरीके से काम करते हैं। ठीक है? अल्लाह ताला के हुक्मों के मुताबिक इस दुनिया के इंतजामी उमूर को चलाते हैं। ओके? लेकिन ये बहुत थोड़े से बंदे होते हैं, ये कोई, यानी हर बंदा जो होता है वो ऐसा नहीं होता, हर नेक बंदा भी अब्दाल नहीं होता। ठीक है ना? हत्ता के जो अल्लाह के वली जो होते हैं, इवन उनमें से भी हर कोई अब्दाल नहीं होता। ठीक है ना? बहुत कम ऐसे बंदे होते हैं। बहरहाल, तो तस्बीह करने का मतलब क्या होता है कि अल्लाह ताला को पार्टनर से पाक करार देना। ठीक है ना? उसी तरह तस्बीह का एक और भी मतलब होता है। ठीक है ना? वो मतलब उमूमन हमारे जहन में नहीं होता। ओके? यानी तस्बीह का मतलब पाकी बयान करना है, ये तो फिर कुछ लोगों के जहन में होता है ना ये मतलब। ठीक है? जिन्होंने सुभान अल्लाह का मतलब पढ़ा होता है तो उनके जहन में ये बात होती है, पाकी बयान करना अल्लाह ताला की। लेकिन एक मतलब ऐसा है कि जो के इवन इल्म रखने वालों के जहन में भी नहीं होता। वो क्या मतलब है? किसी के अगर जहन में दूसरा मतलब हो इसका, शिर्क से पाकी, ये तो एक मतलब हुआ ना। ठीक है? लेकिन एक और भी इसका मतलब है, अगर किसी के जहन में है तो आप बता सकती हैं अभी। जी, तस्बीह बयान करने का एक और मतलब, नहीं किसी के जहन में, चले फिर यार जिस बता देता है कि पाकी बयान करना तो सिर्फ शिर्क से पाकी बयान नहीं होती है, बल्कि गलतियों से पाकी बयान करना कि अल्लाह ताला गलतियों से पाक हैं, अल्लाह ताला गलती नहीं करते। ठीक है? क्या मतलब गलती नहीं करते? मतलब ये कि अल्लाह ताला जो भी फैसला करते हैं वो सही फैसला होता है, उसके अंदर कोई गलती नहीं होती, कोई चूक नहीं होती, ठीक है ना। अल्लाह ताला जो हुक्म देते हैं उन हुक्मों के अंदर कोई गलत बात नहीं होती, वो बिल्कुल सही हुक्म होते हैं, जैसा हुक्म होना चाहिए था किसी मामले के को तय करने के लिए। अल्लाह ताला बिल्कुल सही सही हुक्म देते हैं, उसी तरीके से अल्लाह ताला बिल्कुल सही सही फैसले करते हैं, ठीक है ना। फैसलों में अल्लाह ताला गलती नहीं करते। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला ने मुझे जितना रिस्क दिया है, तो ये रिस्क जो अल्लाह ताला ने मुझे दिया है ना, इसको देने में अल्लाह ताला ने कोई गलती नहीं करी है, अल्लाह ताला ने कोई मिसकैलकुलेशन नहीं करी है कि मुझे मिलना तो ज्यादा चाहिए था लेकिन अल्लाह ताला ने नाउज बिल्ला गलती कर दी और ज्यादा के बजाय मुझे कम दे दिया, ठीक है। ये गलती अल्लाह ताला नहीं करते। उसी तरीके से मेरे जो हालात हैं, जिन हालात से मैं गुजर रहा हूँ या मैं गुजर रही हूँ अपने घर के अंदर, अपने खानदान के अंदर, अपनी जिंदगी के अंदर, मिसाल के तौर पर कोई बीमारी आ गई, राइट, या मिसाल के तौर पर घर के अंदर हालात आपस में लोगों के ऐसे बन गए, ठीक है ना। तो ये जो हालात मेरे बने हुए हैं, ये हालात भी ऐसे नहीं है कि आई डिड नॉट डिजर्व दिस, ठीक है। ये गोरों का, अंग्रेजों का फकरा है ना, क्योंकि ये भी एक काफिराना फकरा है असल में। आई डिड नॉट डिजर्व दिस, क्या मतलब इसका आई डिड नॉट डिजर्व दिस। इंसान ये कह रहा होता है कि अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर ऐसे हालात भेज दिए कि जिन हालात में जो हालात मेरे ऊपर नहीं आने चाहिए थे, मेरे ऊपर नहीं आने चाहिए थे ये हालात, ठीक है ना। तो ये जो इंसान की सोच होती है ना, तो ये सोच असल में क्या कह रही होती है, ये कह रही होती है कि अल्लाह ताला मेड अ मिस्टेक, नऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह ताला मेड अ मिस्टेक बाय सेंडिंग दीज हालात अपॉन मी, ये हालात मेरे ऊपर भेज करके ना, नऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह ताला ने गलती कर ली है, अल्लाह ताला को ऐसा नहीं करना चाहिए था, राइट। तो ये हम अल्लाह ताला के ऊपर ना एक इल्जाम लगा रहे होते हैं, अल्लाह ताला के साथ एक बुराई कर रहे होते हैं, अल्लाह ताला के बुराई लगा रहे होते हैं, ठीक है। तो सुभान अल्लाह का मतलब ये होता है कि हम अल्लाह ताला को हर किस्म की बुराई से पाक करार दें, हर किस्म की गलती से पाक करार दें, कि अल्लाह ताला ना तो किसी पार्टनर के मोहताज हैं, अल्लाह ताला के ना कुदरत के अंदर कोई कमी बेशी है, और ना अल्लाह ताला के फैसलों में कोई गलती है, ना अल्लाह ताला की तकसीम में कोई गलती है, ठीक है। जो अल्लाह ताला ने किया है बिल्कुल ठीक किया है, सही। तो सुभान अल्लाह का बहुत वसी मतलब है। इसी वजह से तो आगे बढ़ के हजरत यूनुस अलैहि सलाम का जिक्र भी आता है इसी सूरत के अंदर, कि उनको अल्लाह ताला ने जो मछली के पेट से निजात दी, तो वो किस तस्बीह की वजह से दी थी। उन्होंने भी तो ये कहा था ना, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका, कि कोई इबादत के लायक नहीं है सिवाय आपके, सुभानका, आप पाक हैं हर किस्म की गलती से, हर किस्म की शिर्क से, हर किस्म की यानी गलत फैसलों से आप पाक हैं। इन्नी कुंतु मिनल ज़ालिमीन, मैंने गलती करी है, मैं ज़ालिमीन में से हूँ, मैं गुनाहगारों में से हूँ, ठीक है ना। और अल्लाह ताला ने इस कुरान यानी कुरान में इस वाक़े का जिक्र करके साथ ये भी फरमा दिया कि जो इस तरह से अल्लाह ताला की पाकी बयान करता है ना, कि ब्लेम अपने ऊपर लेता है, अल्लाह पर ब्लेम नहीं डालता, अल्लाह को हर किस्म के ब्लेम से पाक करार देता है और अपने ऊपर ब्लेम लेता है, तो हम उसको उसके उस वो जिस मछली के पेट के अंदर गिरफ्तार होता है, उसको उस मछली के पेट से आजाद कर देते हैं, तो उसको निजात दिला देते हैं, और कयामत तक हम इसी तरीके से ईमान वालों को मछली के पेटों से निजात देते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो भाई भाई लोग थे, राइट, इनके एक भाई ने जो कि नेक था, उसने इन लोगों को यही याद दिलाया, क्या मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि तुम अल्लाह के नाम की तस्बीह क्यों नहीं करते, ठीक है, कि भाई अल्लाह ताला ने जो हमें रिस्क दिया है, इस रिस्क के अंदर इन लोगों का हिस्सा भी रखा है, ठीक है ना। तो इन लोगों को हिस्सा देना जो है, ये अल्लाह ताला की तकसीम के मुताबिक है, तो हमें इसके ऊपर नाखुश नहीं होना चाहिए कि हम क्यों दें इन गरीबों को हिस्सा, राइट। हम तो अपनी मेहनत से कमाते हैं, तो हम सारा का सारा जो जो प्रोड्यूस है वो अपने घर में ले जाया करें, ठीक है ना। तुम्हें अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करनी चाहिए थी, सुभान अल्लाह कहना भी चाहिए था, और सुभान अल्लाह के मुताबिक सोचना भी चाहिए था, और सुभान अल्लाह के मुताबिक तुमने अमल भी, फैसले भी करने चाहिए थे, ठीक है, तो तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। तस्बीह के लफ्जी मानी पाकी बयान करने के हैं, मतलब यह है कि फुकरा व मसाकीन से अपना माल बचा लेने की तदबीर का मंशा यह है कि आप ये समझते हैं कि अल्लाह तुमको इसके बजाय और ना देगा, अगर तुम गरीबों को दे दोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें और देने पर कादिर नहीं है, तुम ये सोचना शुरू कर देते हो, हालांकि अल्लाह ताला इससे पाक है, वो खर्च करने वालों को अपने पास से और ज्यादा देता है। ठीक है, तुम खर्च करो अल्लाह ताला तुम्हें और देगा, आगे ये खर्च करने का मतलब ये आगे दो, अल्लाह ताला की मखलूक को दो, पीछे से अल्लाह ताला तुम्हें और देना शुरू कर देगा। ठीक है, जैसे कि आपको पहले भी शायद बताया था कि सुरंग का कॉन्सेप्ट होता है, नफक, सुरंग, टनल, ठीक है, उसके अंदर जब गाड़ी दाखिल होती है ना, तो गाड़ी अगर आगे चलती रहें गाड़ियां उस टनल से, तो पीछे से ट्रैफिक जारी रहती है, लेकिन अगर गाड़ियां उस टनल में दाखिल होने के बाद ब्रेक लगा के खड़ी हो जाएं, ठीक है ना, और आगे नहीं जाएं, तो फिर क्या होगा कि पीछे से जो गाड़ियां आएंगी वो इस टनल के अंदर जैम होना शुरू हो जाएंगी, ट्रैफिक जैम शुरू हो जाएगा, और बिल आखिर इतना ट्रैफिक जैम होगा कि अब टनल के अंदर गाड़ी आ ही नहीं सकेगी, एंटर ही नहीं हो सकेगी। ठीक है ना, बिल्कुल यही मामला रिस्क का भी है कि रिस्क को जब हम खर्च नहीं करते ना, तो रिस्क हमारे अंदर जमा होता रहता है, जमा होता रहता है, लेकिन बिल आखिर एक वक्त आता है कि अब जो है वो मजीद आने का रास्ता भी बंद हो जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से रिश्तेदारों पर खर्च करना सबसे ज्यादा अहम जो है वो अपने रिश्तेदारों पर खर्च करना है, करीबी रिश्तेदारों का सबसे ज्यादा हक होता है, सबसे ज्यादा हक अपने बीवी बच्चों का होता है इंसान के ऊपर, वो सबसे करीबी लोग होते हैं, फिर उसके बाद जो अपने बाकी इमीडिएट फैमिली होती है, भाई बहन माँ बाप, राइट, इनका हक होता है, उसके बाद फिर जो दूर के रिश्तेदार होते हैं जैसे कजन्स, राइट, और खानदान के दूसरे से अफराद, उनका हक होता है, और इस तरीके से जब रिश्तेदारों का मामला फिर मुकम्मल होता है तो उसके बाद फिर पड़ोसियों का हक होता है, ठीक है, और फिर पड़ोसियों के बाद जो है वो यानी करीब के पड़ोसियों का ज्यादा हक होता है, और उसके बाद फिर दूर के पड़ोसियों का हक होता है। ठीक है, तो इन इस प्रायोरिटी के साथ जो है वो इंसान को खर्च करना चाहिए। कालू सुबहान रब्बिना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, इस भाई की बात उस वक्त तो किसी ने ना सुनी, मगर अब सबने इकरार किया कि अल्लाह ताला पाक है हर नुक्स व कमी से, और हम जालिम ठहरे कि हमने फुकरा के हिस्से को भी खा लेना चाहा। ठीक है, तंबीह, ये दरमियाना आदमी जिसने सही बात कही थी अगरचे दूसरों से बेहतर था, मगर फिर बहरहाल उन्हीं के साथ हो लिया था। ठीक है ना, क्योंकि जब इन लोगों ने ये प्लानिंग करी थी ना, तो उस वक्त इसने रोकने की कोशिश तो करी थी, लेकिन ये अलग नहीं हुआ था इनसे, ये शामिल हो गया था, क्योंकि ये कोई जो है ना वो मान नहीं रहा था इसकी बात को, तो ये उनके अमल के अंदर शामिल हो गया। ठीक है, तो उन्हीं की गलत राय पर अमल के लिए तैयार हो गया था, इसलिए हशर उसका भी इन्हीं जैसा हुआ, क्योंकि पूरा ही बाग तबाह हुआ ना, इस बाग के अंदर इस भाई का भी तो हिस्सा था ना जिसने नेकी की बात करी थी, राइट, लेकिन अल्लाह ने इसके हिस्से को भी तबाह कर दिया। क्यों तबाह कर दिया इसके हिस्से को? तो इससे मालूम हुआ कि जो आदमी किसी गुनाह से लोगों को रोके मगर वो ना रोके, फिर खुद भी उनके साथ लगा रहे, यानी गुनाह में शामिल रहे, शरीक रहे, तो ये भी उन्हीं के हुक्म में होता है, राइट, ये भी उन्हीं के हुक्म में होता है। उसको चाहिए कि वो नहीं रुके तो खुद अपने आप को उस गुनाह से बचाए, अलग हो जाए उस गुनाह से। मिसाल के तौर पर कॉलेज के अंदर आपका कोई बच्चा पढ़ता है, ठीक है, अब कॉलेज में उसके जो दोस्त हैं वो फैसला करते हैं कि चलो जी आज जो है ना हमने जाकर के फलानी फिल्म देखनी है, सिनेमा हॉल के अंदर, थिएटर के अंदर जाके फिल्म देखनी है। ठीक है ना, अब ये आपका बच्चा जो है वो जिस तरह नेक है, आपने उसके घर के अंदर अच्छी तरबियत करी है, कुछ अच्छी बातें उसको बताई है, तो ये अपने दोस्तों को कहता है कि नहीं नहीं फिल्म देखने नहीं जाना चाहिए, ये तो गुनाह का काम है, वहां पर जाकर के तो म्यूजिक भी होगी और उस फिल्म के अंदर तो लड़कियां भी होंगी, औरतें भी होंगी, तो बदनजरी का गुनाह भी वहां पर होगा, और उसके अलावा जो थिएटर के अंदर लोग आते हैं वो लोग भी जो है वो अच्छे लोग नहीं होते हैं, हमें उनके साथ जो है वो थिएटर के अंदर बैठना पड़ेगा, तो ये सारे गुनाह जो है ना वो हमें नहीं करने चाहिए। लेकिन दोस्त उसकी बात नहीं मानते, कहते हैं नहीं जी हमने तो जाना है फिल्म देखने के लिए थिएटर। ठीक है ना, तो अब ये ना बिल आखिर उनके साथ चला जाता है फिल्म देखने के लिए, हालांकि इसने लोगों को रोका था लेकिन चला गया फिल्म देखने के लिए। अब अगर उस थिएटर के ऊपर कोई अजाब आता है ना, तो उस अजाब से ये नहीं बच सकेगा। गुनाह के अंदर ये शामिल रहा, गुनाह इसके नाम है अमाल के अंदर भी लिखा जाएगा, ठीक है ना। और अगर कोई अजाब वहीं पर आ गया तो उस अजाब का ये भी शिकार होगा। अगरचे कि इसने लोगों को मना किया था, तो इसको फिर करना क्या चाहिए था? इसको ये करना चाहिए था कि अगर इसके दोस्त इसकी बात नहीं मान रहे हैं, तो ये उनसे अलग हो जाता और कह देता कि मैं इस काम में तुम्हारा शरीक नहीं होऊंगा, मैं तुम्हारे साथ पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। तब ये गुनाहों से महफूज रहता और तब ये अजाब से महफूज रहता, ठीक है। तो इस भाई ने यही गलती करी कि वो इनके साथ शामिल रहा, तो इस वजह से अजाब का ये भी शिकार हुआ, ठीक है। फअकबल बअदुहुम अला बअदिन यतलावमून, यानी इन लोगों ने अपने जुर्म का तो इतराफ कर लिया, लेकिन अब इल्जाम एक दूसरे पर डालने लगे कि तूने ही अव्वल ऐसी गलत राय दी थी जिसके नतीजे में अजाब आया। क्योंकि ये जो आइडिया होता है ना, ये लोगों के ग्रुप में से एक ही बंदा देता है आइडिया, ठीक है ना भाई। किसी एक ही के जहन में ख्याल आता ना, सबके जहन में एक साथ ख्याल तो नहीं आता। और अगर सबके जहन में ख्याल एक साथ ख्याल आ भी जाए, फिर भी बोलने वाला तो कोई एक ही होगा ना, जो कि इब्तिदा करता है, इनिशिएट करता है इस आइडिया को, इस आइडिया को प्रेजेंट करता है, और फिर बाकी लोग जो है उसकी तायिद करते हैं, ठीक है। तो हमेशा ऐसे ही होता है कि आइडिया किसी एक के जहन में आता है, या उस आइडिया को वॉइस करने वाला एक ही होता है, ठीक है। लेकिन इसकी वजह से सारे लोग बरी जिम्मा नहीं हो सकते, क्योंकि वो इस आइडिया के अंदर शरीक हो जाते हैं, इसकी हाँ में हाँ मिलाना शुरू हो जाते हैं। इसी वजह से तो आपका क्या ख्याल है, कौम साले अलैहिस्सलाम का वाक़या नहीं पढ़ते हैं भाई? ये सब बिस्म रब्बिकल आला लजी वाली जो सूरत है, जिसमें आखिर में कज़्ज़बत समूद बितगवाहा इज़ बअथ अशकाहा, राइट, कि जब उनमें जो कौम साले के लोग थे, उनमें जो शकी था, सबसे ज्यादा शकी उल कल्ब, वो खड़ा हो गया। इज़ बअथ अशकाहा फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाह नाक़तल्लाहु सुक़याहा फकज्जबूहु फ़ाक़रूहा। फिर उस जो शकी आदमी था ना, उसने उस ऊँटनी को मार दिया, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, जब ऊँटनी को उस एक आदमी ने मार दिया, तो अजाब जो है वो पूरी कौम के ऊपर आया, राइट। पूरी कौम पे अजाब क्यों आया? एक बंदे ने खड़े होकर के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करी थी, एक बंदे ने जो है वो ऊँटनी को मारा था, पूरी कौम क्यों तबाह हो गई अजाब के अंदर? क्योंकि बाकी कौम जो थी वो उसको बकअप कर रही थी, उसकी हाँ में हाँ मिला रही थी, उसके गुनाह में शरीक थी, उसको बुरा ना समझ रही थी, ना उसको रोक रही थी, और ना उसके उस गुनाह से अपने आप को अलग कर रही थी, राइट। क्योंकि बाकी कौम ने यह काम नहीं किया, इस वजह से अजाब के अंदर सारे के सारे शरीक हुए। बिल्कुल इसी तरीके से जब हमारे भी माहौल मुआशरे के अंदर कोई गुनाह हो रहा होता है ना, तो जब हम वहां पे देखने के लिए जाते हैं ना, जरा चलो जी जरा चल करके देखते हैं, हैं, और जाकर के उसको एंजॉय कर रहे होते हैं उस गुनाह को, ठीक है। तो ये देखने की जो का जो अमल होता है जा करके, ठीक है, तो उस अमल के अंदर शामिल होने की वजह से हम भी उस गुनाह के अंदर गुनाह के शरीक हो जाते हैं, ठीक है। चाहे किसी किस्म का, जैसे कि कभी वो न्यू ईयर सेलिब्रेशन होती है, ठीक है, तो बहुत सारे माशाल्लाह मौलवी लोग पहुंच जाते हैं उधर, मौलवी से मुराद दाढ़ी वाले, राइट, और बहुत सी जो है वो मौलवियात भी पहुंच जाती हैं जो बुरके वाली होती हैं, ठीक है ना। लेकिन उस न्यू ईयर सेलिब्रेशन के अंदर जो उसको उसके ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, वहां पर जो हूल हड़प्पा करने वाले जो लोग होते हैं, ठीक है ना, वो तो बिल्कुल ही यानी फासिक और फाजिर किस्म के लोग होते हैं, ठीक है। वहां तो बिल्कुल पर्दे वर्दे का कोई कोई नाम नहीं होता, औरतों मर्दों का इख्तलात होता है, नाच गाना हो रहा होता है, और पटाखे छोड़े जा रहे होते हैं, और न जाने क्या क्या किया जा रहा होता है, ठीक है ना। लेकिन उसका तमाशा देखने के लिए बुरके वालियां भी पहुंच जाती हैं, राइट, दाढ़ी वाले भी पहुंच जाते हैं। तो ये जो बुरके वालियां और दाढ़ी वालियां हैं, दाढ़ी वाले जो हैं, ये वहां जाकर के ना उस गुनाह में शरीक हो जाते हैं असल में, ठीक है ना। ये अपने आप को अलग नहीं समझ सकते कि वहां पे जाएंगे और वहां पे जाकर के तस्बीह लेकर के जाएंगे, और वहां खड़े होकर के इस्तफार की तस्बीह पढ़ेंगे, अस्तगफुरुल्लाह 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 अस्तगफुरुल्लाह, हाँ, और वहां जाकर के सुभानअल्लाह की तस्बीह पढ़ेंगे, तो हम उस गुनाह से बच जाएंगे? नहीं, आप उस गुनाह से सुभानअल्लाह की तस्बीह पढ़ के नहीं बच सकते, इस्तगफार की तस्बीह पढ़ के नहीं बच सकते। आपको तो वहां पर जाना ही नहीं था भाई, मजबूरन पहुंच गए किसी वजह से, वो और बात है। मिसाल के तौर पर आप कोई जरूरी काम की वजह से सड़क पे आपको निकलना पड़ा, राइट, आपको किसी रिश्तेदार के घर जाना था जो बीमार थे या जिनको आपकी मदद की जरूरत थी, आप तो वहां जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ये न्यू ईयर सेलिब्रेट करने वालों ने ट्रैफिक जैम कर दिया, ट्रैफिक को रोक दिया। अब वहां पर जो है वो उन्होंने नाच गाना शुरू कर दिया सड़क के ऊपर। अब आप अपनी गाड़ी के अंदर बैठी हुई हैं और आपको भी वो देखना पड़ रहा है, क्योंकि अब आप क्या करें, आप गाड़ी चलाने की वजह से आंखें बंद करके आप मुराकबा तो नहीं कर सकती, राइट। तो अब आपको मजबूरन उस न्यू ईयर सेलिब्रेशन को देखना पड़ रहा है, ठीक है ना। लेकिन अब आप जो इस्तिगफार की तस्बीह कर रही होंगी ना, तो उससे आपको फायदा होगा, आप उस गुनाह में शरीक नहीं होंगी, क्योंकि आप कराहियत के साथ उसके अंदर मजबूरन शामिल हुई हुई है ट्रैफिक जैम की वजह से, ठीक है, तब आप उसका हिस्सा नहीं बनेंगी। लेकिन अगर आप घर से निकली कि जरा चल के तमाशा देख करके तो आए क्या होता है उधर, ठीक है ना, तो ये गुनाह के अंदर शामिल होना होता है। ओके, इसकी एक और भी सूरत है, वो ये कि जैसे कि जहाजों का डिस्प्ले हो रहा है, जहाजों का डिस्प्ले, ठीक है ना, एयरप्लेन जो है वो कुछ उन्होंने यानी कुछ एयर शो वगैरह करना, ठीक है ना। अब एयर शो करने के लिए, एयर शो देखने के लिए आप जा रहे हैं, ठीक है, एयर शो किसी जिस वजह से हो रहा है वो वजह कोई इतनी अच्छी वजह नहीं है। मिसाल के तौर पर ये जो यौम आज़ादी वाली तकरीबात होती हैं, तो यौम आज़ादी की तकरीबात कभी कोई इस्लाम में तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है ना, यौम आज़ादी की तकरीबात, तो यौम आज़ादी की तकरीबात में एक एयर शो भी एक तकरीब होती है, ठीक है, कि वो जहाज जो है वो उड़ करके जाते हैं और कभी जो है वो जो जो कलरफुल स्मोक होती है वो छोड़ते हैं, स्मोक के जरिए से आसमान में कुछ शक्लें वगैरह बनाते हैं, मतलब शक्लें तो नहीं बनाते, कुछ ऐसे डिजाइन वगैरह बनाते हैं, ठीक है। अब इस एयर शो को देखने के लिए, क्योंकि इसके अंदर ना म्यूजिक है ना इसके अंदर जो है वो औरतों का इख्तलात है, बल्कि आप कहीं दूर खड़े होकर के उस एयर शो को देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप उस एयर शो को देखने जाते हैं सिर्फ अपने बच्चों की खातिर, छोटे बच्चों की थोड़ी सी एंटरटेनमेंट हो जाएगी, हलाल एंटरटेनमेंट, क्योंकि वहां पे ना म्यूजिक है ना वहां पे कोई और इस तरह का गुनाह हो रहा है, ठीक है ना। जहाजों को देखना तो खाली गुनाह नहीं होता है ना, लेकिन आप अपनी एंजॉयमेंट के लिए नहीं जा रहे हैं, आप अपने बच्चों की एंजॉयमेंट के लिए जा रहे हैं, क्योंकि आपके बच्चों को एंजॉयमेंट का कोई और इस वक्त वेन्यू नहीं मिल रहा है, और बच्चों को जरूरत होती है इस तरह की एंजॉयमेंट की। तो ऐसे आपने किसी ऐसी एंजॉयमेंट के लिए अगर बच्चों को ले जाए ना, बच्चों की खातिर खाली, और उसमें ख्याल आपने यानी जरूरी आपने ये बात देखी है कि उसमें कोई यानी हराम काम नहीं हो रहा है, ठीक है ना, वो दूर दराज की जो यानी एक इंटेलेक्चुअल हराम, वो जो इंटेलेक्चुअल खराबी है कि हाँ भाई वो यौम आज़ादी होना नहीं चाहिए और वतन का हमारे मुल्क के अंदर कॉन्सेप्ट नहीं है, ये वो इस तरह की जो बहुत ज़्यादा डीप जा कर के डिटेल्स है ना, वो तो उसकी वजह से ये एयर शो हराम नहीं हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि उसके ऊपर फिर काफी इल्मी तौर पर आप डिस्कशन कर सकते हैं कि जी वतन का होना जो है वो हराम है कि जायज है कि क्या नहीं है कि क्या है, ठीक है, तो वो एक अलग किस्म की डिस्कशन है। बहरहाल मैं ये कह रहा हूँ कि एयर शो देखने के लिए आप खाली बच्चों की एंटरटेनमेंट की खातिर अगर वहां पर जा रहे हैं ना, तो वो इस वजह से फिर आपके लिए जायज होगा, ठीक है, अगर वहां पर म्यूजिक और दूसरे किस्म की हराम चीजें नहीं है तो ऐसे जो है वो आप देखे जा सकते हैं, ठीक है ना, तो फिर आप उस आप गुनाह के अंदर शामिल नहीं कहलाएंगे। उसके बाद फ़ाखबरा बाउदूम अला बाउदी तलावमून, तो फिर एक दूसरे को उन्होंने फिर अजाब यानी वो इल्ज़ाम देना शुरू कर दिया, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि ये जुर्म उनमें से किसी का तनहा नहीं था, बल्कि सब या अक्सर इसमें शरीक थे, ठीक है, अक्सर इसमें शरीक थे का क्या मतलब, क्योंकि जो जिस भाई ने इनको मना किया था तो वो भाई जो है वो जहनी तौर पर शरीक नहीं था, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर तो वो भाई भी इसके अंदर शरीक था, तो इस वजह से उन्होंने अक्सर गलत इस्तेमाल कर दिया। तंबीह, आजकल इस मामले में इब्तिला आम है कि बहुत सी जमातों के मजमूई अमल की वजह से कोई नाकामी या मुसीबत पेश आ जाए तो उस वक्त एक दूसरा अजाब उन पर यह होता है कि उसका इल्ज़ाम एक दूसरे पर डालने में अपना वक्त ज़ाया करते हैं, ठीक है, वक्त ज़ाया कर रहे हैं ना, अब सीधा सीधा आपको तौबा करनी चाहिए थी, आपको अपने गुनाह से तौबा करनी चाहिए थी और दूसरों को भी जो है वो तौबा की तलकीन करनी चाहिए थी, ना ये कि आप इल्जाम डालने के अंदर अपना वक्त मजीद जाया कर रहे हैं। कालू या वैलना इन्ना कुन्ना तागीन, यानी इब्तिदान एक दूसरे पर इल्जाम डालने के बाद जब गौर किया उन्होंने तो फिर सबने इकरार कर लिया कि हम सभी सरकश गुनाहगार हैं। ये एतराफ़ नदामत के साथ उनकी तौबा के कायम मुकाम था। इसी बिना पर उनको अल्लाह से ये उम्मीद हुई कि अल्लाह ताला हमें इस बाग से बेहतर बाग अता फरमा देंगे, ठीक है। इमाम बग़वी ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद से नकल किया है कि इब्ने मसूद ने फरमाया कि मुझे ये खबर पहुंची है कि जब इन सब लोगों ने सच्चे दिल से तौबा कर ली तो अल्लाह ताला ने उनको इससे बेहतर बाग अता फरमा दिया जिसके अंगूरों के खोशे इतने बड़े थे कि एक खोशा एक खच्चर पर लादा जाता था। ठीक है ना, यानी अंगूरों का जो गुच्छा होता है जिसको हम उर्दू में गुच्छा कहते हैं, ठीक है ना, वो इतना बड़ा एक गुच्छा होता था। अंगूरों का साइज यहाँ पे नहीं बता रहे कि अंगूरों का साइज भी बहुत ज्यादा बड़ा होता था, साइज तो नॉर्मल अंगूरों के मुताबिक के बराबर होता होगा, लेकिन ओवरऑल गुच्छे इतने बड़े बड़े होते थे उनके दरख्तों में कि एक खच्चर के ऊपर सिर्फ एक ही गुच्छा आता था उनके अंगूरों। तो इसे क्या पता लगता है कि ये जो भाई थे ना, इनका बाप ईमान वाला था, तो ये भी ईमान वाले थे असल में। इन्होंने गुनाह किया था, इन्होंने शिर्क नहीं किया था, इन्होंने कुफर नहीं किया था, इन्होंने गुनाह किया था, ठीक है। और जब इनके ऊपर ये गुनाह की वजह से ये एक टेम्प्ररी अजाब आया, क्योंकि बाग तबाह हुआ ना इनका, इनकी जान तो खत्म नहीं हो गई। अगर जान खत्म हो जाती तो फिर कहां से तौबा करते, यानी अगर अल्लाह ताला इनको इनको ही जला के मार देते तो फिर तौबा की तो कोई रास्ता ही नहीं रहता ना इनके पास, मरने के बाद कोई थोड़ी तौबा होती है, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने ना इनके ऊपर टेम्प्ररी अजाब डाला, जैसे कि ईमान वालों के ऊपर उमूमन जो है वो टेम्प्ररी अजाब आते हैं इसी तरह के, ठीक है। तो उसके बाद फिर इन्होंने उस गुनाह से तौबा कर ली, नादिम हुए, शर्मिंदा हुए, अल्लाह ताला से माफी मांगी, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला ने फिर इनको दुनिया की नेमतें दोबारा से दे दी। कज़ालिकल अजाब, के ऐसे ही अजाब होता है, इसका तर्जुमा क्या कि ये अजाब, यही अजाब होता है, इसी तरीके से अजाब होता है। अहले मक्का के अजाब, अजाब तहत का इजमाली और बाग वालों के खेत जल जाने का तफसीली जिक्र फरमाने के बाद आम ज़ाब्ता इरशाद फरमाया अल्लाह ताला ने, क्योंकि ये जो आयात अल्लाह ने नाज़िल फरमाई थी इसका शान नुज़ूल हम पहले पढ़ चुके थे ना कि अहले मक्का के ऊपर जो कहत का अजाब आया था तो उसके ऊपर फिर अल्लाह ताला ने ये आयात नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर नाज़िल फरमाई थी। तो फिर अल्लाह ताला ने आम ज़ाब्ता इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह का अजाब आता है तो इसी तरह आया करता है, और दुनिया में अजाब आ जाने से भी इनके आखिरत के अजाब का कफारा नहीं होता, बल्कि आखिरत का अजाब इसके अलावा और इससे ज्यादा सख्त होता है, ठीक ना। यानी अगर कोई अजाब के बाद तौबा ना करे, या ये कि अजाब ही ऐसा आया कि अब वो मर गया, तो इस अजाब से आखिरत के अजाब की नफी नहीं होती, बल्कि आखिरत में इससे ज्यादा बड़ा अजाब आएगा। वला अजाबुल आखिरत अकबर, आखिरत का अजाब इससे भी ज्यादा बड़ा अजाब होता है। अगली आयात में अव्वल नेक मुत्तकी बंदों की जजा का जिक्र है, और इसके बाद मुशरिकीन मक्का के एक और बातिल दावे का रद्द है। वो ये कि कुफार मक्का कहा करते थे कि अव्वल तो क़यामत आने वाली नहीं है, और दोबारा जिंदा होकर हिसाब किताब का किस्सा सब अफसाना है, और अगर बिलफर्ज ऐसा हो भी गया तो हमें वहां भी ऐसी ही नेमतें और माल दौलत मिलेगा जैसा दुनिया में मिला हुआ है। इसका जवाब कई आयतों में दिया गया है कि क्या अल्लाह ताला नेक बंदों और मुजरिमीन को बराबर देंगे। ये कैसा अजीब व गरीब फैसला है जिस पर ना कोई सनद, ना दलील, ना किसी आसमानी किताब से इसका सबूत, ना अल्लाह की तरफ से कोई वादा वईद कि वहां भी तुम्हें नेमत देगा। तो ये एक इंतहाई गलत सोच है कि इस दुनिया के अंदर अगर किसी को माल दौलत और नेमतें मिल गईं तो इसका मतलब यह है कि वो अल्लाह का मुकर्रब बनता है, अल्लाह ताला के यहाँ वो मकबूल है, और आखिरत में जो है वो उसको वहां पर भी जाकर के नेमतें मिलेंगी। हालांकि आखिरत की नेमतों का ताल्लुक जो है वो ईमान के साथ और अमल सालेह के साथ है। तो ये जो बस यहाँ तक ही आज हम पढ़ेंगे, बाकी इंशाल्लाह अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो बस एक बात करके आज खत्म करेगा क्लास को कि अल्लाह ताला के जो ये अजाब होते हैं ना, तो ये मुख्तलिफ शक्लों में आते हैं, ठीक है। उनमें से एक शक्ल ये होती है कि अल्लाह ताला बंदे को ही मार देते हैं, खत्म कर देते हैं मौत, ठीक है। उसने गुनाह किया, उसने कुफर किया, और अल्लाह ताला की तरफ से फिर उसकी मौत की शक्ल में अजाब आ गया, ठीक है ना। तो ये मौत वाला अजाब जो है ये तो यानी उसके किस्से को ही तमाम कर देता है ना, अब चैप्टर ही बंद हो गया, अब उसका आखिरत का अजाब मौत के बाद शुरू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक दूसरी शक्ल ये होती है कि वो जिंदा रहता है लेकिन अल्लाह ताला उससे नेमतों को छीन लेते हैं, ठीक है। अब ये जो नेमतों के छिनने वाला वाला मामला होता है ना, तो ये हर एक के समझ में नहीं आता, ठीक है, क्या उसको अजाब मिल रहा है या अजाब नहीं मिल रहा, कुछ और हो रहा है, ठीक है ना। ये अंडरस्टैंड करना ये हर एक के बस की बात नहीं होती, ठीक है। तो इसके लिए जो है ना अहले इल्म की जरूरत पड़ती है, इवन ये बात समझने के लिए कि क्या मेरे ऊपर अजाब अल्लाह का है कि नहीं है। ये इल्म और अकल वाले जो अल्लाह ताला की खुसूसी अकल की नेमत से मालामाल होते हैं ना, जिसको कि लुब कहते हैं, ठीक है ना। अकल तो अल्लाह ताला ने सबको दी है, ठीक है ना, हत्ता के जानवरों के पास भी एक अकल होती है, हत्ता के चरिंद परिंद परिंद के पास और पत्थरों के पास भी एक अकल होती है, ठीक है ना। अकल के लेवल्स होते हैं ना, पत्थर के पास भी अकल है लेकिन कितनी कम अकल है कि पत्थर जो है वो उससे कुछ कर नहीं सकता, ठीक है ना, सिवाय अल्लाह की तस्बीह बयान करना, और वो भी एक बहुत बड़ा काम है। यानी पत्थर अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, वइम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही, ठीक है ना, कोई शय ऐसी नहीं है सिवाय इसके कि वो अल्लाह ताला की तस्बीह और तहमीद बयान करती है। तो अकल अल्लाह ने दी है, जब ही तो पत्थर तस्बीह और तहमीद बयान करते हैं, उसी तरीके से जानवर भी, उसी तरीके से इंसान भी, जिन भी, ठीक है। लेकिन अकल के लेवल्स होते हैं, तो अकल का सबसे ऊंचा लेवल, सबसे एडवांस लेवल क्या होता है, उसको कुरान कहता है लुब, लाम और बा, लुब। जैसे आपको याद होगा, आपने अक्सर जगह तिलावत करी होगी, उलुल अलबाब, ये खास अकल वाले लोग होते हैं, उलुल अलबाब, ठीक है ना। ये जो उलुल अलबाब होते हैं ना, इनको ये लुब वाली अकल मिलती क्यों है, इनको इनकी अताअत की वजह से लुब मिलता है, लुब वाली अकल मिलती है, बहुत ही यानी सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ अकल। ये अकल वाले जो हैं ये बात को समझ सकते हैं अल्लाह ताला की कि क्या हिकमत है, कि क्या मामला हो रहा है किसी के साथ, क्या उसके ऊपर अजाब नाजिल हो रहा है या उसके ऊपर सवाब नाजिल हो रहा है, यानी भलाइयां नाजिल हो रही हैं। इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करना जो है ना, ये हर एक के बस की बात नहीं होती, ये उलुल अलबाब का काम होता है। लेकिन जो आम लोग होते हैं उनके पास चूंकि लुब होती नहीं है, इस वजह से आम लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा होता कि उनके ऊपर अजाब नाजिल हो रहा है कि उनके ऊपर अल्लाह की नेमतें नाजिल हो रही हैं, वो डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ना ये जो उलमा के साथ जुड़ना, उलुल अलबाब के साथ जुड़ना, ये इसलिए भी जरूरी होता है ताकि हमें पता चल सके कि मेरे ऊपर क्या हो रहा है, राइट, नेमतें आ रही हैं कि मेरे ऊपर अल्लाह का अजाब आ रहा है, ठीक है ना। ये इतना आसान नहीं होता खुद से पता कर लेना। मिसाल के तौर पर एक कौम है, ठीक है, वो कौम जो है वो बुरी तरीके से जलील हो रही है दुनिया के अंदर, ठीक है ना। एक नेशन है, एक कंट्री है, उस कंट्री के लोग, मुल्क के लोग दुनिया में बुरी तरीके से जलील हो रहे हैं, ठीक है, हर तरीके से जलील हो रहे हैं, बुरी तरीके से। लेकिन कोई एक तमाशा हो जाता है, ठीक है, और उस तमाशे के अंदर ना कुछ लोग उनकी वाह वाह कर देते हैं, कोई तमाशा होता है और उस कौम के लोग जो है कुछ तमाशा करते हैं। मिसाल के तौर पर क्रिकेट का मैच, ठीक है, क्रिकेट का मैच होता है, वर्ल्ड कप होता है, ठीक है ना। उस वर्ल्ड कप के अंदर उस कौम की भी टीम जाती है और उस कौम की टीम जो है वो उस वर्ल्ड कप में मैचेस जीत जाती है और जीतते जीतते फाइनल में पहुंचती है और फाइनल मैच भी जीत जाती है, ठीक है ना। अब जो वो फाइनल मैच जीती है तो वो वर्ल्ड कप जीत गई। अब वर्ल्ड कप जब वो जीती है तो जितने क्रिकेट के शायकीन हैं उन्होंने फिर उसकी वाह वाह करनी है ना, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। अगर वो कौम की क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीत जाएगी तो क्या दुनिया के सारे क्रिकेट के शायकीन उसकी वाह वाह नहीं करेंगे, करेंगे ना वाह वाह, ठीक है ना। लेकिन जो क्रिकेट का वो मैच जीती है तो क्या क्रिकेट का मैच जीतने की वजह से जो उस कौम के ऊपर जिल्लत और रुसवाई उसकी दूसरी हरकतों की वजह से आई हुई है, राइट, तो क्या वो जिल्लत और रुसवाई खत्म हो जाएगी, हैं, क्या वो जिल्लत और रुसवाई खत्म हो जाएगी? क्रिकेट का मैच जीतने से तो वो जिल्लत और रुसवाई खत्म नहीं होती ना, हो जाती है, क्या ख्याल है किसी का? क्रिकेट का मैच जीतने से जो उसकी बाकी, मिसाल के तौर पर झूठी कौम है, राइट। वो कौम झूठ झूठ बोलती है, धोखे देती है, ठीक है। अब झूठ की वजह से ना वो पूरी दुनिया में मशहूर है कि ये कौम तो झूठी है, हम तो इस कौम के किसी बंदे को ट्रस्ट ही नहीं कर सकते, ये तो झूठी कौम है, ठीक है ना। इनके जो ताजर हैं, जब ये अपना माल एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे मुल्कों में, तो उस माल के अंदर जो है मिलावट होती है, वो माल जो है वो तीसरे दर्जे का माल होता है। तो ये धोखाबाज कौम मशहूर है, ठीक है ना, धोखेबाज कौम मशहूर हो गई है ना, क्योंकि जो इनके ताजर माल भेजते हैं वो माल कचरे के साथ होता है, थर्ड थर्ड क्लास किस्म का माल होता है, ठीक है ना। और इसके जो लोग जब नौकरी करने के लिए दूसरे मुल्कों में जाते हैं, तो इस कौम के लोग जो है वो झूठ बोलते हैं, हर एक से वादा खिलाफी करते हैं। तो अब ये कौम झूठी और मक्कार और धोखेबाज मशहूर है, लेकिन इस कौम की जो क्रिकेट टीम है, उस क्रिकेट टीम में कितने लोग होते हैं? 16 खिलाड़ी होते हैं, 11 तो ग्राउंड में होते हैं, लेकिन कुछ रिजर्व खिलाड़ी होते हैं, तो टोटल 16 खिलाड़ी होते हैं क्रिकेट टीम के, ठीक है ना। तो 16 खिलाड़ियों ने खूब मेहनत करी क्रिकेट के अंदर, और बिलाखिर वो क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीत गए। तो क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीतने की वजह से लोगों ने बहुत इनकी वाह वाह करी, लेकिन वाह वाह करने की वजह से क्या इनका झूठा, मक्कार, फरेबी, दगाबाज होना, वादा खिलाफ होना, क्या ये भी खत्म हो जाएगा लोगों के जहन से? हो जाएगा खत्म? कोई ताल्लुक है इन दो बातों का? क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीतना, क्या उस वर्ल्ड कप जीतने की वजह से ये कौम फिर आप सच्ची मशहूर हो जाएगी, लोग इस कौम के ऊपर ट्रस्ट करना शुरू हो जाएंगे? नहीं होंगे ना, ठीक है। लेकिन ये कौम चूंकि गुनाहों के अंदर लगी हुई है ना, तो अब इस गुनाहों की वजह से होता क्या है? इस गुनाहों की वजह से अल्लाह ताला निगाहों पे पट्टी बांध देते हैं, अकल पर पट्टी लगा देते हैं, पट्टी बांध देते हैं, ठीक है ना। अकल मर जाती है, गुनाहों की ये नहुसत होती है, ये गुनाहों की बेबरकती होती है कि अकल पर पट्टी बन जाती है। इसके लिए एक और सख्त जुमला उर्दू के अंदर होता है, मत मार दी जाती है। क्या हो जाती है? मत मार दी जाती है। तो जब मत मार दी जाती है ना, अकल पर जब पट्टी बन जाती है ना, तो फिर क्या होता है, इंसान जो है वो उसको कोई जाहिरी कामयाबी नजर आती है, कामयाबी मिलती है ना, जाहिरी कामयाबी, तो उस जाहिरी कामयाबी को अपनी हकीकी कामयाबी समझना शुरू हो जाता है। जाहिरी कामयाबी को, जो कि एक बहुत ही यानी कोई गैर अहम किस्म की कामयाबी थी, उस गैर अहम कामयाबी को अपनी असल कामयाबी समझना शुरू हो जाता है, और समझता ये है कि उस गैर अहम कामयाबी की वजह से उसको इज्जतें मिल गईं, राइट, उसको इज्जतें मिल गईं, और अब लोग जो हैं दुनिया के उसको रेस्पेक्ट करना शुरू हो जाएंगे, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होता, राइट, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होता, ठीक है ना भाई। वो तो एक आपको एक गैर अहम किस्म की कामयाबी हुई है, जाहिरी तौर पर एक कामयाबी नसीब हुई है, ठीक है ना। ठीक है, आपने क्रिकेट के अंदर आपकी टीम ने जी बड़ी बड़ी मेहनत करी, ठीक है ना, बड़ा उन्होंने जो है वो प्रैक्टिस कर करके जो है वो बड़े अच्छे प्लानिंग के साथ जो है वो आपका टूर्नामेंट जीत करके ले आए। तो भाई उस टूर्नामेंट जीतने की वजह से आपके कौम के जो अपने दूसरे बदामाल हैं, वो बदामाल तो खत्म नहीं हुए ना, राइट। वो जो आपके झूठ, दगा, फरेब और इस किस्म के जो सारे आपके मसले थे, वो मसले तो दूर नहीं हुए। आपके जो असल प्रॉब्लम्स हैं वो तो कहीं भी नहीं गए ना, वो तो सारे के सारे वहीं पर हैं, लेकिन कौम वाले किस धोखे में मुबतला हो गए हैं कि वो समझ रहे हैं कि क्रिकेट का टूर्नामेंट जीत लेना ये हमारी असल कामयाबी है, ठीक है ना। हालांकि उनके ऊपर जिल्लत और मस्कनत का अजाब आया हुआ है अल्लाह ताला की तरफ से, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं, जिल्लत और मस्कनत का अजाब अल्लाह की तरफ से आया हुआ है, पूरी दुनिया में वो कौम जलील हो रही है, लेकिन समझ नहीं पा रही वो इस बात को, वो समझ नहीं पा रही इस बात को, ठीक है ना, क्योंकि उनकी अकल के ऊपर पट्टी लगी हुई है, ठीक है, उनकी जो बसीरत है वो बंद हो चुकी है, बसीरत गुल हो चुकी है उनकी, सही है। तो अब उनको चाहिए क्या? उनको ये चाहिए था कि उलुल अलबाब से अपना ताल्लुक जोड़ते, उलुल अलबाब उनको समझाते कि तुम जिस चीज को अपनी कामयाबी समझ रहे हो, ये तुम्हारी कामयाबी नहीं है, ये तुम्हारी कामयाबी नहीं है, तुम धोखे में मुबतला हो, तुम्हारे ऊपर जो अल्लाह का अजाब आया हुआ है ना, ये अजाब बदस्तूर कायम है, ये कहीं नहीं गया ये अजाब, तुम खुश ना हो अपने इस बेवकूफी की कामयाबी के ऊपर, जाहिरी कामयाबी के ऊपर तुम खुश ना हो, बल्कि तुम अपने गुनाहों को छोड़ो, तौबा करो अपने गुनाहों से, ताकि अल्लाह ताला अपने अजाब को तुम्हारे ऊपर से टाल सके। ठीक है, बात समझ में आई किसी को? कोई सवाल है किसी के पास?
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाजरा जी,
जी वैसे तो लिख करके सवाल करने का,
जी जी हजरत जी, मैं बाद में आपको लिख देती हूँ बाजी। हजरत जी,
अगर क्लास रिलेटेड है तो खैर, चलें अभी आप बोल ही चुकी हैं तो सवाल कर लीजिए।
जी जी हजरत जी, वो पूछना था कि जैसे हमारे इंडिया वाले पे हालात आए हैं, तो हमारे दरमियान बात हो रही थी ऐसी कि ये आजमाइश है या तो या कि हमारे पर अजाब है, तो समझ में नहीं आ रहा है कि आजमाइश है या अजाब है।
जी उलुल अलबाब से जब हम पूछते हैं ना, तो हमें इसकी जो जो पहचान मिलती है, वो पहचान ये होती है कि इंसान को अपने अहवाल को देखना होता है, अपने ईमान और आमाल को देखना होता है कि उसका ईमान और आमाल जो है वो कैसा है। ठीक है, तो अगर उसका ईमान और आमाल अच्छे हैं ना, कुरान और सुन्नत के मुताबिक हैं, तो फिर ये आजमाइश होती है, तो फिर ये आजमाइश कहलाएगी। लेकिन अगर उसके उसका ईमान और आमाल कुरान और सुन्नत के मुताबिक ना हो, ठीक है ना, बल्कि उसके खिलाफ हो, तो फिर ये अजाब कहलाएगा। ठीक है ना, ये एक यानी यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। ठीक है ना, अब ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल पूरी कौम के ऊपर अप्लाई हो सकता है, कभी पूरी कौम पर भी अप्लाई हो सकता है, जैसा कि कुरान के अंदर जो कौमों के वाकयात हैं तो वो पूरी कौम की शक्ल में अप्लाई हुआ ना, लेकिन कभी ये पूरी कौम पर अप्लाई नहीं होता, बल्कि ये छोटे छोटे ग्रोहों पर अप्लाई होता है, ग्रुप्स पर अप्लाई होता है उस कौम के। ठीक है ना, तो अब इंडिविजुअल ग्रुप्स को देखा जाएगा कि ये जो ग्रुप है इस कौम का, ये किस यानी इसकी क्या क्या हालात हैं। ठीक है, अगर इसका ईमान और आमाल जो है वो अच्छे हैं, तो उनके लिए ये जो हालात हैं ये आजमाइश हैं, लेकिन जो कौम के दूसरे ग्रुप हैं जहाँ पे आमाल और ईमान सही नहीं है, तो उनके लिए जो है वो अल्लाह ताला का अजाब है। ठीक है, तो अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने खास तौर पर इंडिया का पूछा है, तो इंडिया के अंदर आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं कि बहुत मुख्तलिफ किस्म के लोग रहते हैं, मुसलमानों में भी बहुत तफसील है, कुछ मुसलमान जो हैं वो अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक जिंदगी गुजार भी रहे हैं, अल्लाह ताला के हुक्मों के मुताबिक अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर का भी काम कर रहे हैं। ठीक है ना, तो वो जो मुसलमान हैं तो उनके लिए ये आजमाइश होगी, क्योंकि हालात तो हालात का असर तो उनके ऊपर भी हो रहा है ना, राइट, लेकिन उनके ऊपर ये आजमाइश होगी, उन लोगों का रिएक्शन क्या होगा इन हालात के ऊपर, उन लोगों का रिएक्शन ये है कि उनका रुजू इल्लाह पहले के मुकाबले में भी बढ़ गया, राइट, पहले भी वो अल्लाह ताला से रुजू करते रहते थे जब ये हालात नहीं आए थे, उस वक्त भी वो नेकियां करते थे, तौबा करते थे, इबादतें करते थे, गुनाहों से बचते थे, अब जब ये हालात आए हैं उनका रुजू इल्लाह बढ़ गया है। ठीक है, तो ये उनके लिए आजमाइश है। लेकिन उसके बरक्स कितने और मुसलमान इंडिया में रहते हैं, क्योंकि आपने इंडिया का सवाल किया, इस वक्त मैं पाकिस्तान की बात नहीं करूंगा, इंडिया की बात करूंगा। ठीक है, तो मुसलमान इंडिया में और भी बहुत सारे हैं कि उनके ऊपर जो ये हालात आए हैं ना, इंडिया के ऊपर जो हालात आए हैं, तो उसके नतीजे में दूसरे जो मुसलमान हैं उनका रुजू इल्लाह बढ़ा नहीं है, बल्कि और कम हो गया है, राइट, और कम हो गया है। पहले भी वो गुनाहों की जिंदगी गुजार रहे थे, अब उन्होंने गुनाहों को और ज्यादा कर दिया है, हत्ता के जो थोड़ी बहुत नेकियां वो पहले करते थे ना, थोड़ी बहुत नेकियां, वो थोड़ी बहुत नेकियां भी करनी छोड़ दी हैं। मिसाल के तौर पर अब खौफ से मस्जिद नहीं जाते कि कोई हिंदू पकड़ के मार देगा, तो पहले भी मस्जिद जाते थे तो ऐसे ही बस थोड़ा बहुत ही जाते थे, अब खौफ की वजह से और भी मस्जिद जाना छोड़ दिया। पहले ही जो है वो उनकी औरतें पर्दा नहीं करती थी, ठीक है ना, सिर्फ बाहर निकलते हुए थोड़ा सा पर्दा करती थी, घर के अंदर कोई पर्दा नहीं करती थी, ठीक है ना, तो घर के अंदर अगर पर्दा नहीं करनी है गैर महरम औरतों से, बस बाहर निकल करके आपने बुर्का पहन लिया है, तो ये तो पर्दा नहीं होता। बाहर बुर्का पहनना, घर में पर्दा ना करना, ये पर्दा नहीं होता। लेकिन वो जाहिरी तौर पर थोड़ा सा पर्दा कर रही थी, ठीक है ना, बाहर पर्दा कर रही थी। लेकिन अब हिंदुओं के खौफ की वजह से जो बाहर पर्दा कर रही थी वो भी खत्म कर दिया, राइट। घर में तो पहले भी पर्दा नहीं कर रही थी, जो बाहर कर रही थी वो भी छोड़ दिया हिंदुओं के खौफ की वजह से। तो ये जो औरतें हैं, इनका रुजू इल्लाह बढ़ा नहीं है, इनका रुजू इल्लाह और कम हो गया है, तो इनके ऊपर ये अल्लाह का अजाब कहलाएगा। आपके सवाल के जवाब हो गया या कुछ और? ठीक है, इसके बाद उसके साथ क्लास खत्म करते हैं। माजरत चाहूँ आपकी दूसरी टीचर से कि उनको इतनी देर वेट करना पड़ा। सलाम, रिकॉर्डिंग को स्टॉप करके अपना